ओम शांति। गीता ज्ञानदाता शिव बाबा की स्नेही समर्पित गीता ज्ञान को अपने जीवन में साकार रूप में लाने वाली आदरणीय गीता बहन जी का आज की इस क्लास में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। सुख दुख मान अपमान गीता के सार को अपने जीवन में लाने वाली गीता बहन जी हम सबके बीच में। हमारी मर्यादाएं हमारी सुरक्षा कवच पर क्लास कराने के लिए आए हैं। आप कई स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं की। गुजरात भावनगर में आप 14 वर्षों तक रहे और ज्ञान सरोवर एकेडमी में भी आपने आवास निवास और भी कई व्यवस्थाएं ज्ञान सरोवर की संभाली हैं और वर्तमान समय आप शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने देश विदेश में कई स्थानों पर जाकर बाबा का अनेक आत्माओं को ज्ञान सुना करके बाबा की सेवाओं में वृद्धि की है। आप सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज भी कराते हैं और मधुबन में होने वाले टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी आप प्रभावशाली शिक्षिका हैं। 1985 में जब यूएनओ के द्वारा युवा वर्ष मनाया गया तो अपने विश्वविद्यालय की ओर से 6 स्थानों से पदयात्रा निकाली गई थी। कन्याकुमारी से दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, सोमनाथ से दिल्ली। सोमनाथ से दिल्ली वाली पदयात्रा का आपने कुशल संचालन किया और गांव-गांव में जाकर के अनेक आत्माओं को व्यसन मुक्त कर परमात्मा से जोड़ा, अनेकों की दुआएं प्राप्त की। ऐसे बाबा की विशेष सर्विसेबल गीता बहन जी हम सबके बीच में हैं। आपके लिए मैं 2 शब्द कहूंगी। दिव्य गुणों की फूल बनी रूहानी है मुस्कान, खुशबू फैली पवित्रता की आकर्षित है आप पर भगवान। मीठी मैना का गुंजन विवल करता प्राण। मर्यादा दर्शन आपका जीवन सरल सरस सुनाती। आप बाबा का मीठा ज्ञान।
ओम शांति। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल प्यारे बाबा ने स्वयं आकर सद्ज्ञान दिया है। बाबा का सत्य ज्ञान ही, उसकी ये पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये हम सबके जीवन का अनुभव है कि जैसे ही सत्य ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं को मिला, हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया। हमारी मान्यताओं में जो अंधश्रद्धा मिथ्या ज्ञान था वो खत्म हो गया। हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठता आने लगी, हमारी वाणी में भी संयम आने लगा, सत्य ज्ञान न सिर्फ हमें मिला लेकिन हमने विवेक से समझा भी है, दिव्य बुद्धि का वरदान भी प्राप्त किया है और उसका परिणाम हमारे जीवन में परिवर्तन, जो कुछ अयथार्थ अपवित्र असार था वो खत्म होने लगा। बाबा भी कहते हैं ज्ञान समझना माना सेंसिबल बनना और गुणवान बनना। ज्ञान समझना माना माया से धोखा नहीं खाना, माया का शिकार नहीं बनना। इसको ज्ञान समझना कहते हैं। सिर्फ ज्ञान रोज आकर सुनना वो ज्ञानी तो आत्मा की परिभाषा नहीं। आज भी बाबा ने कहा कि मैं भक्त आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाता हूं, क्योंकि जीवन सिर्फ भावना से नहीं चला सकते हैं, जीवन सत्यता से चलता है और ज्ञान माना ही सत्य। पिछले वर्ष भी बाबा ने एक ध्यान खींचने वाली बात कही थी। वैसे तो शुरू से बाबा साकार मुरलियों में फॉलो फादर की बात करते हैं, लेकिन पिछले सीजन में बाबा ने कहा था कि बाप और दादा दोनों को फॉलो करना है। कई बार शिव बाबा का सत्य ज्ञान हम मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं, शिव बाबा का ज्ञान मानते हैं, पर ज्ञान मानने का अर्थ, उसका प्रैक्टिकल अर्थ है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। सिर्फ मानते हैं तो वो भक्ति में भी हर कोई ना कोई विचारधारा को मानते ही है, कोई ना कोई धर्म संप्रदाय से लोग जुड़े हुए होते हैं और किसी न किसी की फिलॉसफी तो मानते हैं, परंतु उनमें और हमारे में अंतर यही है कि हम सिर्फ मानते नहीं हैं, सिर्फ समझते नहीं, सिर्फ समझाते नहीं, लेकिन मानना माना उस अनुसार चलना भी। तो ऑटोमेटिक ज्ञान का एक एक सत्य समझने से उससे संबंधित हमारी जो मन वचन कर्म के स्तर की प्रक्रिया है उसमें शुद्धि आने लगती है। मान लो पहला ही लेसन जो बाबा ने हमें सिखाया कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई, इस बात को समझना, स्वीकार करना, समझना प्लस स्वीकार करना माना मानना। तो वो मानने का प्रैक्टिकल अर्थ यही है कि देह दृष्टि समाप्त हो जाना और हरेक के साथ रूहानी नजर रखना, ये है मानने का मतलब। इसलिए हम ज्ञानी सु आत्माओं के लिए बाबा ने यज्ञ ने जो नियम मर्यादाएं बनाए हैं, एक्चुअली वो ज्ञान समझने का प्रैक्टिकल रिजल्ट वो आना चाहिए। हम दवाई करते हैं, परहेज का पालन करते हैं, तो दवाई की शक्ति काम करती है, क्योंकि परहेज वो बैकग्राउंड तैयार करता है, वो जमीन तैयार करता है जिसमें दवाई अपना कार्य करती है, अपना रंग दिखाती है, शक्ति दिखाती है। जैसे बीज डालते हैं तो जमीन को पहले तैयार करते हैं, बीज कितना भी शक्तिशाली हो पर जमीन को खेड़ा ना हो, हल से ठीक ना किया हो, ऐसे ही क्वालिटी बीज भी डाल दो तो वो रिजल्ट नहीं आता है। तो शक्तिशाली बीज के साथ जमीन भी तैयार चाहिए और फिर धूप और पानी देते हैं तब जाके वृक्ष उगता है और फल आता है। दवाई लेते हैं और परहेज पालन करते हैं तब बीमारी दूर होती है और स्वस्थता प्राप्त होती है। हर कार्य में आप देखिए प्रकृति भी और प्रकृति के जो भी पदार्थ है वो भी अपने नियम से कार्य करते हैं, तभी वो निरंतर कार्य कर पाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हर संस्था की, हर कंपनी की, हर धर्म की, हर संप्रदाय की, हर संगठन की, हर पक्ष की अपनी एक डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, हरेक के अपने नॉर्म्स है। तो इस प्रकार हम जो भी बाबा के बच्चे, बाबा से जुड़े हैं, बाबा के सत्य ज्ञान को हम मानते हैं और बाबा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से हम जुड़े हैं, तो हमारे जीवन की भी एक डिसिप्लिन है कि संस्था से जुड़े हुए लोगों के जीवन में क्या क्या नियम मर्यादाएं, हमारी धारणाएं, हमारी पहचान है। कल भी बाबा ने कहा था, कल या आज की मुरली में, कि जो मीठे आज्ञाकारी बच्चे हैं वो देखने से ही पता पड़ता है, उसको कोई अलग बैज नहीं दिया जाता है, पर उनकी चलन से और बात से दिखाई देता है तो लोग सोचते हैं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। शायद कल की मुरली में ये बाबा का महावाक्य था। तो हम जो भी नए पुराने, जो भी बाबा के बच्चे हैं, हमारा बाबा से प्यार है, हम सत्य ज्ञान की नित्य पढ़ाई करते हैं, हम इतने ऊंचे विश्वव्यापी यज्ञ विद्यालय संस्था के हम सभ्य हैं, वो हमारे आचरण से दिखाई देना चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं कि चलन और चेहरे से अब सेवा हो, सिर्फ हम ज्ञान दे ज्ञान माने उससे नहीं, मुख ज्ञान दे और चरित्र भी हमारा उसको बोले, ज्ञान को सिद्ध करने वाला हो, तो लगता है कि ये इस संस्था के सभ्य है। और बाबा ने जो जो हमारे जीवन के नियम मर्यादाएं बनाए हैं, जो बेसिक हमारे नियम है, वो हर किसी को पता है। योगी जीवन के चार स्तंभ हम बताते हैं, वो चित्र भी हरेक ने देखा है और हरेक को पता है, ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि, नियमित ज्ञान योग का क्लास जिसको सत्संग कहते हैं, और दैवी गुणों की धारणा माना दिव्य मैनर्स, डिवाइन मैनर्स वाला जीवन। ये हमारे जीवन के आधारभूत धारणाएं हैं। ये नियम मर्यादाएं पक्के हैं तो ज्ञान योग की जीवन टिकती है, स्थिर रहती है, शक्तिशाली बनती है। बाबा ने जिस समय नियम मर्यादाएं बनाए, आज से 78 वर्षों पूर्व, और बाबा के कई बच्चे सालों से, कोई 65 वर्षों से, 62, 60, 50, 40 वर्षों से, 30 सालों से, और आजकल जो भी भाई बहने आए हैं नए, सब इन नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं। सबको जरूर ये महसूस होता होगा कि शायद जिस समय बाबा ने ये नियम मर्यादाएं बनाए, उस समय से भी ज्यादा अभी इन नियम मर्यादाओं की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, इसलिए सालों पूर्व से इन नियमों का पालन करवाकर आज हमें मेंटली इतना प्रिपेयर कर दिया है, इतना शक्तिशाली बना दिया है, जो आज के समय में हम अनुभव करते हैं कि हमारा सालों से नियमों का पालन करना कितना कल्याणकारी रहा है, जो आज इतने आकर्षणों के बीच भी हम अपने आप को सेफ रखते हैं। बाबा ने जब नियम बनाए थे, उस समय माया का कोई भपके वाला रूप भी नहीं था, संसार में चीजों का इतना कोई आकर्षण भी नहीं था और ना इतनी चीजें थी, लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि वो बरसों का पुरुषार्थ आज अंत के समय में कितना उपयोगी हो रहा है, कितना उपयोगी हो रहा है। और हम इन अनेकानेक प्रलोभनों, अवरोधों और आकर्षणों के बीच भी हम अपने आप को कितना सलामत, सुरक्षित अनुभव करते हैं। बरसों से जो ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं, क्योंकि ये हमारा मूल और मुख्य नियम है। ब्राह्मण कहा ही उनको जाता है जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। नया जन्म, अलौकिक जन्म ही तब कहा जाता है जब हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, भल हम रोज क्लास करते हैं, सेवा भी करते हैं, सेवा में सहयोगी भी हैं, तो भी हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहे जाएंगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि जीवन की ये मुख्य धारणा, जिनको दुनिया में कोई नहीं मानता, और बातें तो फिर भी लोग मानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, धर्म और दान करना चाहिए, सत्य और प्रेम से बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, सब धर्म मानते हैं और सिखाते हैं। पर इस पवित्रता की जो यूनिक धारणा है, दुनिया में कोई न करा सका, ना उसके लिए किसी ने कहा, और बाबा ने सत्य ज्ञान की शक्ति से हम बच्चों में ये पवित्रता की धारणा कराई। इसलिए हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल सेंस में, जैसे हम लोगों को भी समझाते हैं कि संसार का हर मनुष्य एक अर्थ में ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, क्योंकि ब्रह्मा आदि पिता है। परंतु प्रैक्टिकल सेंस में, प्रैक्टिकल अर्थ में ब्रह्मा कुमार कुमारी वो है जो ब्रह्मा बाप को फॉलो करता है। तो ये व्याख्या हमें सदा ध्यान में रहनी चाहिए कि हम तभी सच्चे पक्के प्रैक्टिकल अर्थ में बाबा के बच्चे तब हैं जब बाबा की प्रथम आज्ञा और वरदान पवित्र बनो, योगी बनो की कर्म में, मन वचन कर्म में धारणा करते हैं। और जिसके जीवन में ये धारणा है, उनको अनुभव है कि बाबा उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, उनकी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान विशेष इस दुनिया में आए ही हैं। कौन से कार्य के लिए? पतितों को पावन बनाने। और वो जो नई पवित्र दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग उनको चाहिए। इसलिए जो भगवान की आज्ञा पर अपने जीवन को पवित्र बनाता है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, विषय वासना से मुक्त रहते हैं, और पवित्र दुनिया की स्थापना के कार्य में नेचुरली वो मददगार हो गए, तो उनकी हर मनोकामना बाबा पूरी करता ही है, क्योंकि भगवान की आज्ञा को उन्होंने सिर माथे धारण की है। इसलिए उनको कभी भी बाबा को कहना नहीं पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है, उसे कोई एक्स्ट्रा योग नहीं करना पड़ता है। जो हम छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए आजकल करने लगे हैं कि ये बात सिद्ध हो जाए या ये ठीक हो जाए, उसके लिए कई स्वमान को भी मंत्र की तरह रटने लगे हैं, परंतु बाबा के सच्चे पक्के बच्चों का अनुभव है कि जो मन वचन कर्म से पवित्र बनने की ईश्वरीय मर्यादाओं को निभाते हैं, उनके भाग्य खुल जाते हैं, उनके कर्म में सत्यता आती है और वे ऑटोमेटिक भगवान की कृपा के पात्र बन ही जाते हैं। इसलिए उनको कोई चिंता भय नहीं रहता। वो पवित्रता ही एक ऐसी सुरक्षा है कि कोई मंत्र तंत्र कोई भूत प्रेत उस पर असर नहीं करता है। वो इतने अपने आप को अच्छा लड़ोल उसमें महसूस करेंगे। इस प्रकार जब पवित्रता की बात है तो उससे तीन बात जुड़ी हुई है। पवित्रता का प्रथम स्टेप स्वच्छता है, जो हमें यज्ञ में भी बहुत सीखने को मिला है। बहुत छोटी छोटी बातें साकार मुरलियों में स्वच्छता की रॉयलिटी की बाबा ने हमें सिखाई है। रोज धुले हुए वस्त्र पहनना से लेकर के टॉयलेट जाते हैं तो स्नान करना, कपड़े बदलना, ये सब धारणाएं बाबा ने हमें बताई है। मैं आज इन प्राइमरी धारणाओं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिसका फाउंडेशन पक्का होगा वो ही कर्मातीत स्थिति की ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। जो सच्चा पक्का ब्राह्मण होगा वो ही फरिश्तेपन में सूक्ष्म वतन की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। जिसका ब्राह्मण जीवन एक्यूरेट नहीं है वो फरिश्ता बनने की बात नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता है, क्योंकि प्रथम ही ठीक नहीं है तो नेक्स्ट पुरुषार्थ उसका आगे कैसे चलेगा। और हम सब जानते हैं ये महावाक्य, ये वाक्य वेदों में भी लिखा है कि कर्म की शुद्धि के बिगैर वेद भी कुछ नहीं कर सकते। माना कर्म की शुद्धि के बाद ही ज्ञान की विद्वत्ता काम आती है। इसलिए ये स्वच्छता की छोटी छोटी बातें लगती है लेकिन हम सबका अनुभव है कि जिनकी प्राइमरी पढ़ाई अच्छी होती है वो ही आगे की पढ़ाई में भी सफल रहते हैं। जिसका बेसिक ठीक नहीं है उसका आगे भी ठीक नहीं रहता। भले बाद में भी वो बेसिक पढ़ ले वो अलग बात है, लेकिन बेसिक पढ़ाई हमारी पक्की होनी चाहिए। इसलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है हमारे जीवन, हमारा यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिन। विद्यालय के हिसाब से हम क्लास में आते हैं तो ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम भाई बहने जो समर्पित है वो पूरे समय सेवा में है, फुल टाइम सेवा में है, इसलिए समर्पित भाई बहने फुल टाइम सफेद यूनिफॉर्म पहनते हैं। पर जो भाई बहने घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा के बच्चे बने हैं वे पढ़ाई में सेवा में ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, इससे विद्यालय प्रत्यक्ष होता है। निर्मल शांता दादी जी ने एक बार हमें बात बताई थी कि शुरू में जिस समय यज्ञ में सफेद ड्रेस पहनना शुरू हुआ और हम जब कतारबद्ध होकर बाबा हमें घुमाने ले जाते थे क्लिफ्टन पर, तो एक सफेद ड्रेस पहनने से जैसे हंस मंडली जा रही है, एक ऐसा प्रभाव सिंधवासियों पर पड़ा था कि वो खुली नजर से देखते रहते। माना यूनिफॉर्म से संगठन भी सिद्ध होता है, हम एक संस्था के सदस्य हैं, वो प्रत्यक्ष होता है, और हमारी डिसिप्लिन, बाबा कहते हैं ना सफेद ड्रेस क्या क्या तुम्हें याद दिलाता है, बैज लगाने से क्या क्या तुम्हारे में दृढ़ता रहती। तो ये जो भी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे मन को, हमारी स्थिति को प्रभावित करने वाली। जैसे हमारा ये मर्यादा पूर्ण ड्रेस आज तक ब्रह्मा कुमारी जैसा ड्रेस टोटली कोई और धर्म संप्रदाय का है ही नहीं। बाबा को ये कितना ज्ञान समझने के बाद, ज्ञान समझने का मतलब ही है कि हमारा जीवन सोल कॉन्शियस हो, आत्मभिमानी, और जब आत्मभिमानी की बात है तो स्पष्ट है कि इसमें देह प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा ड्रेस बाबा ने बनाया जिसमें कोई अंग दिखाई न दे। आत्मभिमानी बनना मेरे लिए भी सरल हो जाए और मुझे देखने वाली हर आत्मा भी आत्मभिमानी बन सके, ये एक सहयोग इससे मिलता है। तो ये बातें छोटी छोटी है। मैं आपको बताऊं, मेरे शुरू के 72 या 73 में ही अमृतसर में पहला सम्मेलन था, हम नए नए समर्पित हुए थे और वहां जाना हुआ, और हमने चंडीगढ़ में जो मॉर्निंग क्लास देखा कि एक एक सफेद वस्त्रधारी और एक योगी की तरह लाइन से डिसिप्लिन में ऐसे भाई बहने बैठे थे, हमारे परिवार के मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और तुरंत हमारे पिताजी ने, हम तो समर्पित भी नहीं हुए थे, और हमारे लिए फुल ड्रेस ऐसा बना दिया कि हमें ये नियम मर्यादा वाला ड्रेस पहनना। अब आप सोचिए, जिस समय बाबा ने ये धारणा कराई, आज ये कितना हमारे लिए सेफ्टी का साधन बना है, क्योंकि आज दुनिया में जो भी गंदी घटनाएं हो रही है, देह के प्रति आकर्षण, किसी का देह के पीछे पागल हो जाना, बलात्कार, इसमें देह प्रदर्शन कितना कारण बनता है। तो आज हमें होता है कि बाबा ने हमें शुरू से सेफ कर दिया ये मर्यादा पूर्ण ड्रेस बनाकर। उस समय आज से 50-60-70 वर्ष पूर्व गंदी दृष्टि वृत्ति भी नहीं थी, लोग इतने महान थे। पर उस समय बाबा ने ये धारणा कराई, आज समझ में आता है कि ये भगवान ने पूर्व तैयारी कराई, हमारी मनसा तैयार की, और आज के विकारी वातावरण में हमारी कितनी सेफ्टी है, क्योंकि हमारी मर्यादा पूर्ण ड्रेस हमें भी आत्मभिमानी बनने में मदद करती। और जब हम आत्मभिमानी हैं, सफेद वस्त्र में हैं, किसी की नजर भी देह में नहीं जाती। इस प्रकार पवित्रता की धारणा, आज कितनी गंदी गंदी रीतियां, गंदे साधन, विषय वासना भोगने के नए नए तरीके, आज जो अज्ञानी दुनिया के अंदर जो मन पर विकारों में, और उसमें भी विशेष काम वासना का जो भूत सवार है, पर इतने गंदे वाइब्रेशन भी हमारे मनसा को नहीं चलित करते हैं, उसका कारण यही है कि हमने सालों से जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, खुद के शरीर को भी हम भूले, हमने किसी के शरीर को याद नहीं किया और ना शरीर को भोगा, उस पवित्रता ने आज माया के पंप वाले समय में भी हमें चलित नहीं किया। तो बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बनाई, उस समय तो सिर्फ हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि कितना साइंटिफिक है, समय के अनुरूप है और सालों की हुई साधना के कारण आज इतनी नेचुरल हमारे जीवन में है कि कोई भी चीजें हमें आकर्षित नहीं करती। तो फर्स्ट स्टेप पवित्रता का स्वच्छता है। आज गवर्नमेंट भी देखो बीमारियां कैसी निकली है और उसके पीछे गंदगी और स्वच्छता, आज गवर्नमेंट भी रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा गांव में रहने वाले लोगों को भी सिखाते हैं कि आप टॉयलेट जाते हैं तो कैसे आपको हाथ धोना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, वो अब सिखा रहे हैं। इतनी बीमारियां फैलने के बाद और हमारे बाबा ने, जब विज्ञान भी नहीं विकास हुआ था तब से हमें सिखा दिया, तब से बाबा ने ये डिसिप्लिन सिखाई कि तुम लोग टॉयलेट जाओ तो स्नान करना चाहिए और कपड़े चेंज करने चाहिए, वही कपड़े वापस पहन के हम नहीं। ये स्वच्छता है, वो हेल्थ के लिए भी जरूरी है। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र मन को भी शांत और स्वच्छ रखने में मददगार। तो योगी जीवन की ये बेसिक धारणा है कितनी जरूरी है, वो बाबा ने शुरू से हमें सिखाया। अन्न शुद्धि की बात आप देखिए, ये सब पवित्रता से रिलेटेड है। शुद्ध अन्न मन को शुद्ध रखता है। उस समय ये नियम को पालन करने में काफी तकलीफ भी होती थी, क्योंकि कोई आने जाने के इतने साधन भी नहीं थे, ज्यादा दिन लगते थे। आजकल तो हर गांव शहर में काफी हम खा सके ऐसी स्वच्छ चीजें, फल, ड्राई फ्रूट्स या मशीन मेड कई ऐसी चीजें अवेलेबल है। आज से 50-60 वर्षों पूर्व ना ऐसे साधन थे, जल्दी यात्रा भी पूरी नहीं होती थी, ना गांवों में ये चीजें अवेलेबल थी, पर बाबा के बच्चों ने भगवान की आज्ञा मानकर इस नियम को इतना पक्का कर लिया कि आज लोग समझ रहे हैं कि लोग वो ही कहते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो भोजन नहीं लेकिन जहर है। आजकल कितना हर चीज में मिलावट, बनावट और क्या क्या हो रहा है कि एक सामान्य मानवता वाला मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी मिलावट आजकल हर चीज में हो रही, गाय भैंस के दूध में क्या हो रहा है, फल सब्जी में क्या हो रहा है, होटलों में क्या हो रहा है। तो बाबा ने जो अन्न शुद्धि का नियम दिया और लंबे समय से इसकी पालना करने से अब हमें उन चीजों का, चाहे उस समय जो शादियां प्रसंग होते थे, वार त्योहार मनाते थे, कोई इतनी चीजें नहीं बनती थी, आज कितनी चीजें बनाते, पर हमें कोई आकर्षण इच्छाएं नहीं होती है, क्योंकि हमने सालों से अन्न शुद्धि का नियम धारण किया। और ये कहा है, गांधी जी ने लिखा है अपने सत्य के प्रयोग किताब में कि जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं उनको स्वादेंद्रिय पर विजय पाना पहले जरूरी है, क्योंकि कनेक्शन है। अन्न एक ऐसा माध्यम है कि उसके द्वारा ही इविल पावर्स के प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता होगा कईयों को कि जो भी सारे इविल पावर्स अप्लाई किए जाते हैं वो अन्न के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में ज्यादा आ जाता है, किसी के ही गुणगान और महिमा करता रहता है, तो लोग कहते भी है कि भाई इसको कुछ खिला दिया लगता है, इसको कुछ पिला दिया लगता है, तभी इनकी बुद्धि इतनी प्रभाव में आ गई है। तो हमें मालूम रहे कि जो भी इविल बुरी मैली विद्याएं हैं उसका प्रयोग अन्न द्वारा ही होता है। तो बाबा ने अन्न शुद्धि का नियम देकर हमें कितना सेफ कर दिया, हर प्रकार से हमारे को सेफ कर दिया। और जिन्होंने ये नियम का पालन नहीं किया, छोटी छोटी बात में ढीले रहे, आज तक उसके अंदर विल पावर नहीं आया। क्योंकि जो एक छोटी छोटी धारणा मर्यादा के लिए पालन करने से जो विल पावर आता है, खाना नहीं खाना, खाकर प्रभाव आना नहीं आना, वो बाद की बात है, पर खाना नहीं है ये संकल्प का पालन करना विल पावर को विकसित करता है। और आज इस धारणा में मैं विजयी हूँ तो मुझे उससे और ऊंची धारणा के लिए विल पावर आएगा। आज बाबा ने हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन की कितनी ऊंची मंजिल बताई कि विकार का अंश वंश भी न रहे, कर्मातीत बनना, विकर्मा जीत बनना, माया मुक्त होना, कितनी ऊंची मंजिल बाबा हमें ले गए। पर शुरुआत इन छोटे छोटे नियम से किया और इन छोटी छोटी मर्यादाओं के पालन करने से आज हम शरीर से साधारण दिखने वाले भाई बहने कितने शक्तिशाली हो गए हैं, जो दुनिया के कहलाने वाले महान आत्माएं भी नहीं कर पाते। एक कितना बड़ा VIP, वो कहे बहुत अच्छा आपका कार्य, बहुत अच्छी सेवा, आपके जीवन सब पसंद, पूरा मददगार सहयोगी भी, पर कहते मैं नहीं आ सकता हूँ, कह रहे क्योंकि मेरे को सुबह सुबह ये बाजार से फलाना खाने की आदत है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। एक छोटी सी चीज में इतना बड़ा कहा जाने वाला VIP बंधा हुआ, और बाबा के बच्चे आज कितनी दृढ़ता शक्ति रखने वाले। तो ये क्यों हमारे में विल पावर आया? क्योंकि हमने बाबा की हर बात को माना। इसलिए बाबा ने पिछले साल हम सबको कहा कि सिर्फ शिव बाबा के ज्ञान को, विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी की को मानना, सिर्फ उसको फॉलो करना नहीं है, उसको मानना माना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, ये प्रैक्टिकल बात है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप और दादा, जैसे ब्रह्मा बाबा को सत्य समझ में आ गया, बाबा ने अपना तन मन धन, मन वचन कर्म, पूरा परिवार बाबा ने सेवा में स्वाहा कर दिया। चलो अब बाबा हमें आज्ञा देता है कि गृहस्थ में रहते कमल बनना है, लेकिन वो निश्चय, वो समर्पण, वो सेवा भाव अपने में लाना, वो है बाबा को फॉलो करना। बाबा करे और बाबा की माने नहीं या हम फॉलो नहीं करें तो प्रैक्टिकल नहीं कहा जाएगा। भक्ति में भी तो बाबा भगवान भगवान हम करते थे, वहां भी तो याद, पर दो चीज की कमी थी ना, जिसके कारण आत्मा की चढ़ती कला नहीं हुई या कल्याण नहीं हुआ। एक तो सच्चा ज्ञान नहीं था और दूसरा जो मानते थे उससे कर्म मैच नहीं होते, जीवन मैच नहीं करता। फिलॉसफी अलग थी, प्रैक्टिकल अलग। संगम युग में उसी शिव बाबा को याद करने से क्यों आत्मा पवित्र बनती है? क्योंकि सत्य ज्ञान और प्रैक्टिकल फॉलो करते। इसलिए जो भी हमारे जीवन की मर्यादा है स्वच्छता के संबंध, अगर हम सब पालन करें, हमारा संगठन कितना भी बड़ा हो जाए तो भी हम व्यवस्थित रह सकते हैं। हमारे घर को, सेंटर को, इस मधुबन बेहद के यज्ञ को हम साफ सुथरा, स्वच्छ, व्यवस्थित रख सकते हैं। इसलिए बाबा ने, क्योंकि ये जो भी हमारी मर्यादाएं, जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसमें ये मदद करने वाली। मान लो हम बाबा की याद में बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, रूरिहान करते हैं बाबा से, और जो सुंदर अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, अगर मुझे इन आंतरिक सूक्ष्म अनुभूतियों को, अलौकिक अनुभूतियों को संभालना है तो जरूरी है कि उसके बाद भी घंटा आधा घंटा मुझे ऊंचे आवाज से बातें नहीं करनी चाहिए, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नियम है कि जो कुछ आप सुनते हैं अगर उसके बाद आप घंटा आधा घंटा मौन रखते हैं तो वो सारी बातें बुद्धि में एब्सॉर्ब होती है, याद रहती है, जीवन में धारण होती है। अगर उसके बाद का आधा घंटा आप साइलेंस में नहीं रहे, तुरंत बातों में आ गए तो आपका मन तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा और जो सुना वो अंडरलाइन नहीं कर सके, तो नेचुरली वो आचरण में लाना मुश्किल हो जाए। इसलिए बाबा ने दैवी गुणों की धारणा के बारे में हमें कहा कि योगी बनना है तो ये भी जरूरी है कि अंतर्मुखता हो, सरलता हो, हमारे में शांति की नेचर हो, गुण ग्राहकता हो, तो ये सारी धारणाएं अवस्था बनाने से ही रिलेटेड है। तो प्रैक्टिकल पुरुषार्थ ही तो उसको ही माना जाएगा ना, कि जो ये बातें भी फॉलो करता, कि अगर सच में उनका लक्ष्य है कि मुझे योगी बनना है, और योगी बनना माना गीता में कहा है ना कि योगी तो मेरा स्वरूप है, ये स्पष्ट कहा है कि तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी और योगी, चारों में योगी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि तपस्वी केवल देह दमन करता है, ज्ञानी में पांडित्य आ जाता है और कर्मी जो है वो दैहिक और लौकिक कार्यों में ही लगा रहता है, योगी इन चारों में योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी मेरा स्वरूप है। उसमें नियम संयम भी है तपस्या के हिसाब से, ज्ञान के द्वारा अवेयरनेस भी है, कर्म में भी कुशलता है और वो परमात्मा याद में भी मग्न रहता है। आज आप देखो, अभी एक ये विशाखापट्टनम में जो साइक्लोन आया, उस समय की एक घटना की बात बताऊं, वहां मैं अभी गई थी और वहां भाई बहनों ने हमें बताया कि साइक्लोन के लिए हर वर्ष गवर्नमेंट हमें सावधान करती है, अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि वो एरिया इस प्रकार का है, पर इतना हर साल गवर्नमेंट कहती थी पर इतना कोई नुकसान नहीं होता था, तो इसलिए इस साल जब अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई बहुत बहुत तो ज्यादा बारिश आएगी, थोड़ी हवा चलेगी, इस प्रकार से कहते 60-70 सालों में ना आया हो ऐसा ये साइक्लोन था और इतना नुकसान करके गया कि लोग माना शॉक हो गए कि ये अचानक क्या हो गया। जो बाबा कहते हैं ना, बाग आया, कब से बाबा बोलते हैं, और लोग सोचते हैं और कई बार ब्राह्मण भाई बहने भी सोचते हैं कि बाबा तो कहते हैं होता तो नहीं है, और अचानक जो बाबा कहते हैं ना कि जब होगा, अगर हम बाबा की बातों को मान्यता देने का नेचर नहीं रखेंगे तो जो सावधानी और कल्याण की बातें बाबा कहेगा उस पर भी हम मान्यता नहीं देंगे और अंडरलाइन नहीं करेंगे तो हमारा अपना ही नुकसान हो जाए। और उसमें एक घटना कि बीच में एक आधा घंटा वो साइक्लोन बंद हो गए, तो पहले जो साइक्लोन आया इससे दुकानें टूटी, उनके छत उड़ गए, कांच वाले जो आजकल के मकान है वो सारे टूट गए, वो दुकानें ऑफिसें सब खुले हो गए। तो जब बीच में आधा घंटा वो साइक्लोन बंद हो गया तो जिनके मन में लोभ लालच के संस्कार थे उन्होंने सोचा कि अब तो साइक्लोन बंद हो गया है तो चलो अपन बाहर जाके चीजें ले आते हैं, दुकानें खुली पड़ी है, ऑफिसें खुली पड़ी है तो चीजें लूट करके ले आते हैं, इकट्ठा करके ले आते हैं, क्योंकि कई चीजें रास्ते पर भी उड़ उड़ के गिरी थी। तो उस लोभ लालच के कारण वो लोग बाहर गए और आधे घंटे के बाद फिर से ऐसा जोर से साइक्लोन आया कि वो बेचारे उनके शिकार बन गए। तो अब हमें होता है कि बाबा ने क्यों ट्रस्टी बनना सिखाया, क्यों धन सेवा में लगाओ ये नेचर क्यों हमारे में डाला, ताकि हमारी लोभ लालच कम हो। तो आज कितना भी खुला चीजें रास्ते में भी पड़ी हो तो भी हमारी नियत नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि बाबा ने हमें संयमी बनाया है, हमारे अंदर लोभ नहीं, हमें जो चाहिए वो बाबा ने दिया ही है, मिल ही जाता है, तो हमारी चीजों में भी बुद्धि नहीं डूबेगी। इसलिए वर्तमान समय में जब चारों ओर लोगों की मनसा या तो विषयी है या दुख शांति वाली है, बाबा ने एक मुरली में कहा था जब किसी में सुख नजर नहीं आएगा तो इंसान की बुद्धि देह में ही जाएगी। और आज आप देखो घूम फिर के वही श्रृंगार चीजें, माना बुद्धि में आखिर सुख के लिए वही साधन, तो देह को भोगने में बुद्धि जाएगी। इसलिए जितना हम बाबा को मानते हैं उतना बाबा का कहा हुआ भी माने, और एक एक नियम मर्यादा आप हर सेंटर पर मर्यादाएं लिखी हुई है वो कल्याणकारी है, यज्ञ ने अनुभव से बनाई है, बाप दादा के मार्गदर्शन में ही ये बनी हुई है, हमारा उसका पालन करना बहुत जरूरी है, हमारी अवस्था बनती है, हमारा जीवन सेफ होता है और हमारी मनसा भी जो निर्विघ्न रखनी है। पिछले के आगे के साल में बाबा ने ये भी कहा था कि यज्ञ निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, जोन निर्विघ्न, हर ब्राह्मण निर्विघ्न, और लास्ट एक ये कहा था कि मनसा भी निर्विघ्न। तो मनसा हमारी निर्विघ्न तभी रहेगी, कोई भी विकार का तूफान या माया तभी उत्पन्न नहीं होगी जब प्रैक्टिकल हमारा जीवन नियमी संयमी सादा सरल और सात्विक होगा। और ये हमारा शक्तिशाली सहयोग है बाबा को एक ठोस सत्य दुनिया स्थापित करने। ओम शांति।